समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में आपको देंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल भी रहेगी और आर्थिक जगत पर भी होगी हमारी नजर। इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन, और सेगमेंट होगा डेडलाइन जिसमें आज बात होगी जैव विविधता, यानी इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में जो छोटे से लेके बड़े जीव जंतु, जानवर, मनुष्य, हम सभी रहते हैं। आज का दिन उन सब के नाम है, तो इसके बारे में भी बात होगी। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ है अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो जागृति, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा 100.1 FM गोल्ड। I am Abhishek Mukhopadhyay and with me today is of course my co-host Jagriti Sharma. And well listeners, Sherlock Holmes remains enduringly popular because of his captivating personality. Secondly, his brilliant method of using logic and science to solve mysteries. And thirdly, the relatable friendship he shared with Dr. Watson. Yes, we are talking about Sherlock Holmes because Sir Arthur Conan Doyle celebrates his birthday today. And Sir Arthur Conan Doyle remains globally popular because firstly, he created Sherlock Holmes, one of the most adapted and enduring fictional characters in history. Secondly, his works revolutionized the mystery genre by introducing early forensic techniques. And lastly, his dynamic engagement writing style that has captivated audiences for generations. And we shall talk about him later in a program. But first, we begin with the news headlines at this hour.
जी, शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ चर्चा की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना।
इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस बायनियर इलेक्शंस फॉर 24 राज्यसभा सीट्स फ्रॉम 10 स्टेट्स ऑन द 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ।
सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीआई के फैसले के खिलाफ याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।
IMD issues रेड अलर्ट फॉर सीवियर हीट वेव ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड विदर्भ टिल टुमारो।
और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about International Day for Biological Diversity. Well, Jagriti, every year, May 22nd is marked as International Day for Biological Diversity by the United Nations. And this day serves as a reminder of the incredible diversity of species, ecosystems and genetic resources that make a planet unique. Biodiversity is the foundation of our food, water, air and overall well-being, and the increasing rate of species extinction, habitat loss and degradation poses a significant threat to biodiversity. And the International Day for Biodiversity aims to raise awareness about these challenges and promote efforts to protect and conserve biodiversity. And the theme for this year's International Day for Biological Diversity is Acting Locally for Global Impact. And this theme emphasizes that reversing global biodiversity loss starts on a small local scale and relies heavily on the combined efforts of communities, local organizations and individuals.
बिल्कुल, और जैव विविधता अपने आप में एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसका उपयोग पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों और उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किया जाता है जिसमें सब मिलकर रहते हैं, आपस में मेलजोल रखते हैं और फलते फूलते भी हैं। जैव विविधता प्रजातियों के बीच, प्रजातियों के भीतर और पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच पाई जाने वाली विविधता है। जैव विविधता में ऊंचे ऊंचे रेडवुड पेड़ों से लेकर सूक्ष्म एक कोशिकीय शैवाल तक सब कुछ शामिल हो सकता है जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देखना असंभव है। जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर जो प्रजातियां हैं वो आपस में जुड़ी हैं, एक दूसरे पर कई बार निर्भर भी होती हैं। जिस तरह से हम कई बार देखते हैं कि जंगल जो है जानवरों का आवास है, जानवर पौधे खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, कई जानवर दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। पौधों को बढ़ने के लिए स्वस्थ मिट्टी की आवश्यकता है। कवक जीवों को विघटित करके मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। मधुमक्खियां और अन्य कीट पराग एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाते हैं और इसी से पौधों का प्रजनन संभव होता है। जैव विविधता कम होने पर ये जो हम एक साइकिल देखते हैं आपस में जो जुड़ा हुआ है वो संबंध कमजोर होने लगते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये संबंध टूट भी जाते हैं और इससे पारिस्थितिकी तंत्र की जो सभी प्रजातियां हैं इनको नुकसान भी होता है। और अधिक जैव विविधता जहां पर होती है जिस भी पारिस्थितिकी तंत्र में और जहां पर कम प्रजातियां हैं जिस किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, तो जो अधिक विविधता वाला पारिस्थितिकी तंत्र है वो अधिक स्थिर होता है और आपदाएं वहां कम आती हैं और वो उसके लिए और अधिक प्रतिरोधी बन जाता है।
एब्सोल्युटली जागृति, एंड बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड ऑन अर्थ। प्लांट्स फॉर इंस्टेंस आर द ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल्सो प्रोवाइड फूड, मेडिसिन, फाइबर एक्सेट्रा। Plants, fungi and worms keep the soil fertile and water clean, and as biodiversity decreases, these systems break down. And biodiversity loss is a decrease in the number of particular species in a certain habitat. Loss of biodiversity can lead to extinction of plant and animal species. Around 1 million species already face extinction, many within decades, unless urgent action is taken, and one out of every 8 living species is in danger of extinction.
बिल्कुल, जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का सबसे अनमोल खजाना है। छोटे कीड़ों से लेकर विशालकाय पेड़ों तक सभी जीवों के आपसी संतुलन और निर्भरता को दर्शाता है। और देखा जाए तो कुछ पंक्तियां अगर इस पे हम देखें कि अंबर से लेकर पाताल तक फैला जीवन का संसार, छोटे कीड़े और विशालकाय जीव सब करते प्रकृति का श्रृंगार। कोई उड़ता नभ में उन्मुक्त, कोई तैरता सागर की गहराई में, हर एक जीव की अपनी कहानी जो बसती है प्रकृति की इस पनाही में। और ये जो लगातार अभी हाल ही में हो या फिर अतीत में हो, कीमती प्रजातियां जो हैं इनका अंधाधुंध दोहन हो रहा है और उनके आवासों के नष्ट होने के कारण कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। उदाहरण के लिए पक्षियों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अब विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे कि डोडो पक्षी, ग्रेट ऑक, पैसेंजर कबूतर और गौरैया भी। अभिषेक, अगर आप गौर करें तो बहुत कम हो गई है।
Absolutely.
बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं, कुछ चिड़िया ऐसी हैं जो हमारे जमाने में हुआ करती थी, लेकिन अभी जो शहरों में बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं या कह लीजिए ये टावर्स हैं, उनकी वजह से अब वो एक तरह से नष्ट हो गई, हमें दिखती ही नहीं है। पृथ्वी की वैश्विक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में जबकि ये जो प्रजातियां हैं ये बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। जैव विविधता के नुकसान से जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है, जो आजकल हम देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, हीट वेव लगातार हो रहा है, सर्दियां होती है तो सर्दियां बहुत ज्यादा होती हैं कहीं पर, मतलब क्लाइमेट चेंज है और जो डिजास्टर्स हैं बहुत सारे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जैव विविधता के बीच जो असंतुलन पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है उसके लिए।
Jagriti, and biodiversity is vital for sustainable development, and it plays a crucial role in providing ecosystem services such as clean air, water, pollination, soil fertility and climate regulation. And the International Day for Biodiversity emphasizes the link between biodiversity conservation and achieving the sustainable development goals. Private organizations, government institutions, NGOs and individuals should all join hands to protect biodiversity, which is vital for the sustenance of mankind. And every day we have to be very sensitive towards biodiversity so that it survives and supports life on the planet, isn't it, Jagriti?
बिल्कुल, और अगर बात करें हम कि वर्तमान में जो मानवीय गतिविधियों के कारण जैव विविधता को गंभीर खतरा हुआ है, इसके कुछ कारण ये भी हैं कि प्राकृतिक आवासों का लगातार विनाश हो रहा है, अंधाधुंध शिकार है, पेड़ों की कटाई हो रही है, जलवायु परिवर्तन की जैसे अभी हमने बात की है, प्रदूषण इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार कारक है, और विदेशी या आक्रामक प्रजातियों का जब प्रवेश डाइवर्सिटी में होता है तो ये भी इनके लिए कहीं ना कहीं एक गंभीर खतरा पैदा करता है। और अगर हम बात करें कि जैव विविधता का हमारे लिए कितना महत्व है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं। पारिस्थितिकी तंत्र का जो संतुलन है ये पर्यावरण को स्थिर और संतुलित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। खाद्य सुरक्षा और विविधता के लिए बहुत जरूरी है। कृषि फसलों में जो आनुवांशिक विकास है उसमें ये मदद करता है। औषधि निर्माण और स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी जो दवाएं हैं, एंटीबायोटिक्स हैं या पारंपरिक अगर उपचार जो होते हैं वो हमें पौधों से, कवक और जीवों से ही प्राप्त होते हैं। और जलवायु नियंत्रण तो अपने आप में है ही, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो हमें ऑक्सीजन देता है और मृदा का स्वास्थ्य और निर्माण करता है, जल का शुद्धिकरण करता है। पॉलिनेशन की प्रोसेस बहुत जरूरी है जो हमें पारिस्थितिकी तंत्र से मिलती है, और ये सब मिलकर हमारे आर्थिक विकास और आजीविका का साधन बनते हैं, रोजगार देते हैं। वैज्ञानिक और शैक्षिक जगत में भी इनका बहुत महत्व है, और कहीं ना कहीं हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक जो मूल्य हैं उनमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
सो दैट कंक्लूड्स अ वेरी एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑन द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। And as part of a series, People's Padma on Akashvani, in an upcoming episode, we speak to N. Rajam, a renowned violinist. She will be honored with the prestigious Padma Bhushan. To listen to the conversation, tune into 100.1 Akashvani Gold today evening at 5:10 p.m. And you can also listen to it on the News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 a.m.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि उनके पास आज के लिए क्या विशेष है।
Yes, and straight away we start off with a story from the exciting state of Goa, and the two-day Shackathon Goa 2026 event concluded at Kalangut after showcasing Goa as an emerging destination for remote working, innovation and startup culture. And the event focused on promoting a new work from beach concept by bringing together technology, tourism and creative industries. We have more from a correspondent.
Shackathon Goa 2026 highlighted Goa's growing popularity among professionals looking for flexible and remote work opportunities. The event promoted Goa as a hub for tourism, technology, innovation and startups. Speaking at the event, Chief Minister Pramod Sawant said,
"The Gen Z looks at a career through the completely fresh lens. They refuse to be a typical office setup and they want the flexibility. It is a mental peace and environmental that sparks creativity. That opens the huge opportunity for the Goa, and we are creating the foundation for Goa become the India's preferred the work from home destination and work from beach, where the people can work with a beautiful view. The government is putting the system in place because the talent should find the opportunity here itself."
On this, IT and Tourism Minister Rohan Khaunte said,
"Goa Shackathon has been a creating awareness. Today, as they sit on the beach, they do some problem solving, they create an ecosystem. I think this will be a very strong message to the whole country. We are different. We have absolutely everything that is there but never been showcased. In the last 4 years we have been trying to do it through tourism. Now technology allows us to complement each other and take it one step ahead."
The initiative is expected to strengthen Goa's image as preferred destination for vacation events where work and vacation are combined and innovation driven activities. According to the state government, Goa has received 1.8 crore tourists in 2025, while international tourist arrivals increased by 10%. The first day of the event focused on artificial intelligence, robotics and startup creation, while the second day highlighted creator economy, AI-based design and digital storytelling. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashvani News, Padji.
और गोवा से आते हैं उत्तर प्रदेश, जहां प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद की सफलता के बाद अब एक जिला एक नदी अभियान के जरिए जल संरक्षण और पर्यावरण पुनरुद्धार की नई कहानी लिख रही है। इसके जरिए नदियों को साफ करने, विलुप्त हो चुकी जलधाराओं को पुनर्जीवित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया जा रहा है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में।
स्वच्छ गंगा मिशन के तहत नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने कई विभागों के साथ मिलकर प्रदेश भर में छोटी नदियों के पुनरुद्धार के लिए परिवर्तनकारी पहल की है। योजना के तहत पीलीभीत में 16 ग्राम पंचायतों में फैली 47 किलोमीटर के क्षेत्र में गोमती नदी का पुनरुद्धार किया गया। कई जगहों पर नहर को चौड़ा व गहरा किया गया। बुलंदशहर में VBGRAM G के जरिए 29 किलोमीटर में नीम नदी का पुनरुद्धार किया गया। इसमें किसानों ने भी स्वेच्छा से सहयोग किया। इस पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सराहना भी की थी। इसके साथ ही कारवां नदी और काली नदी का भी पुनरुद्धार किया गया, जहां दर्जनों ग्राम पंचायतों में गाद निकालने, पौधरोपण और सामुदायिक भागीदारी से घाटों पर सिंचाई, जैव विविधता और सांस्कृतिक प्रथाओं को बहाल किया गया। इसी तरह छोटे छोटे नालों में बदल चुकी संभल की सोत नदी को जन भागीदारी से जीवन दान दिया गया। रामपुर में रेवती, नाहल और नीली तीन मौसमी धाराओं को पुनर्जीवित किया गया। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन परियोजना निदेशक जोगिंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में छोटी नदियों के जीर्णोद्धार से शानदार परिणाम सामने आए हैं। ये नदियाँ जो कभी लगभग विलुप्त हो चुकी थीं, अपने वास्तविक रूप में लौट रही हैं। परिक्रमा के लिए राघवेंद्र त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
Yes, and Ladakh Astro Week is underway in the Union Territory, turning the region's dark Himalayan skies into a week-long celebration of stars, science and tourism. We have more from a correspondent.
The second edition of Ladakh Astro Week is underway in the Union Territory from May 20th to 26th, with the Tourism Department positioning Ladakh as a global hub for astronomy and astrotourism. Building on last year's two-day debut, the festival has been expanded into a week-long celebrations of the cosmos. The event is currently hosting expert-guided stargazing sessions, talks by scientists, astrophotography exhibitions, and theme stall across multiple locations. Activities are being held in Nubra Valley, Sham Valley, Dras and Hanle, which houses the Indian Astronomical Observatory, one of the world's highest. Organizers says the festival showcases Ladakh's pristine environment and exceptionally dark skies, ideal for astronomical observations. The director of Tourism Department, UT Ladakh, Sringpaldan, has said that the ongoing event aims to boost tourism while spreading scientific awareness about astronomy and related fields.
Ladakh Astro Weeks manane ka jo main purpose hai, Ladakh ko global astro tourism pe le jane ka, aur dusra jo iska main objective hai, Ladakh mein jo scientific knowledge astro tourism एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी के बारे में वो करने के लिए ये फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया था। लास्ट ईयर हमने दो दिन का ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था और इस साल हमने वीक लॉन्ग ये फेस्टिवल रखा है। इस फेस्टिवल को हमने नेक्स्ट 3 years के लिए डेट हमने फिक्स किया है, सो दैट वी कैन प्रमोट एट अ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक लेवल ऑल्सो। इस फेस्टिवल को प्रमोट करने के लिए OTM या SATE जितने भी ट्रेवल ट्रेड शोज फेस्टिवल होते हैं, वहाँ पे हमने इस फेस्टिवल को प्रमोट करने की हमने कोशिश किया है। हमारा तो यही कोशिश है कि लद्दाख को एस्ट्रो टूरिज्म के फील्ड में ग्लोबल एक हब बनाने का हमारा मेन उद्देश्य है।
ऑर्गेनाइजर्स बिलीव एस्ट्रो वीक विल हैव डाइवर्सिफाइड लद्दाख टूरिज्म बाय अट्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमर्स, रिसर्चर्स, एस्ट्रो फोटोग्राफर्स एंड ट्रैवलर्स सीकिंग यूनिक नाइट स्काई एक्सपीरियंसेस इन द हिमालयस। फॉर परिक्रमा, दिस इज सेतन ताशी फ्रॉम लेह लद्दाख।
लेह लद्दाख से चलते हैं चाय के बागानों की ओर। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल भव्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया और इस अवसर पर चाय बागानों में वर्षों से काम करने वाले चाय के श्रमिकों को सम्मानित किया गया। कई जगहों पर निशुल्क दार्जिलिंग चाय के स्टॉल लगाए गए। उद्योग कर्मियों और उनसे जुड़ी कंपनियों के इसमें विशेष कार्यक्रम हुए। आइए जानते हैं और अधिक इस रिपोर्ट में।
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, तराई तथा डुअर्स में कल भव्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का पालन किया गया। राज्य के इन इलाकों में करीब 400 से अधिक छोटे बड़े चाय बागान हैं, जहां लाखों श्रमिक काम करते हैं। सन 1853 से यहां के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को याद किया गया। दार्जिलिंग पहाड़ में 87 पंजीकृत चाय बागान है, जो प्रति वर्ष लगभग 150 से 200 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन करते हैं, जिसका करीब 50% उत्तम गुणवत्ता के चाय यूरोप, अमेरिका, जापान आदि देशों में निर्यात किया जाता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दार्जिलिंग पहाड़ के लिए चाय केवल एक कप का प्याला नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, आजीविका तथा आर्थिक स्रोत का मेरुदंड है। इस वर्ष के चाय दिवस के थीम चाय को बनाए रखना तथा समुदाय को समर्थन देना है, तथा इसकी प्रगति प्रगति एवं समावेशिता को बढ़ावा भी देना है। इस भावना के साथ दार्जिलिंग के चौरस्ता, मिरिक, कालिम्पोंग, कर्सियंग, तराई, डुअर्स तथा सिलीगुड़ी के चाय एक्शन कमेटी भवन सहित कई स्थानों पर चाय के सेवन को संवर्धित करने तथा श्रमिकों के कल्याण हेतु चाय कंपनियों तथा इससे जुड़े संगठनों ने चाय स्टॉल लगाकर लोगों को निःशुल्क दार्जिलिंग चाय पिलाई। हजारों लोगों ने चाय के सेवन का आनंद लिया। कई चाय बगानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, कर्शन।
और अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर, जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से, और ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
एंड इन मलेशिया मास्टर्स, इंडियन शटलर अश्मिता छालिया's कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर शी लॉस्ट टू फॉर्मर यूरोपियन गेम्स चैंपियन लाइन Kjærsfeld of Denmark in the women's singles quarterfinals today. And moving on to some business news, benchmark domestic equity indices ended around 0.3% up today. The Sensex rose 232 points to close at 75,415, while the Nifty advanced 65 points to settle at 23,719. Meanwhile, the broader market on the National Stock Exchange ended mixed. The mid-cap 100 added 0.14%, while the small-cap 100 dipped 0.15%. And for more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
22nd of May 1772 is the birth anniversary of the great social reformer and the pioneer of the Bengal Renaissance, Raja Ramohan Roy. He was born in village Radhanagar of the Hooghly district in Bengal. By the age of 15, Raja Ramohan Roy had learned Bangla, Persian, Arabic and Sanskrit. He stood firmly against all sorts of religious bigotry and superstitions. This led to differences between Raja Ramohan Roy and his family. Following differences, he left the house and wandered around the Himalayas and went to Tibet. He travelled widely before returning home.
After his return, Raja Ramohan Roy's family married him in the hope that he would change. But this did not have any effect on him. Raja Ramohan Roy went to Varanasi and studied the Vedas and the Upanishads deeply. When his father died in 1803, he returned to Murshidabad. Ramohan Roy then worked as a money lender in Calcutta, and from 1809 to 1814, he served in the revenue department of the East India Company.
In 1814, Raja Ramohan Roy formed Atmiya Sabha. Atmiya Sabha tried to initiate social and religious reforms in the society. Raja Ramohan Roy campaigned for the rights of women, including the right for widows to remarry and the right for women to hold property. He actively opposed the sati system and the practice of polygamy.
He also supported education, particularly education of women. In 1822, he founded a school based on English education.
In 1828, Raja Ramohan Roy founded the Brahmo Samaj. Through it, he wanted to expose the religious hypocrisies. His efforts bore fruit when the sati system was abolished in 1829.
In 1831, he was given the title Raja by the Mughal king Akbar II, who sent him to the United Kingdom as an ambassador of the Mughal Empire to ensure that the Bengal Sati Regulation 1829, banning the practice of sati, was not overturned. In addition, Roy also petitioned the king to increase the Mughal emperor's allowance. On the 27th of September 1833, while on a visit to Britain, he died of meningitis in Stapleton near Bristol. Stapleton Groves is the place where he was laid to rest initially. Later, he was reinterred in the nearby Arnos Vale Cemetery in 1843, where his mausoleum still stands.
Or आजादी के पहले के भारत के सफल व्यवसायियों में से एक गोविंद राम सिकसरिया की आज पुण्यतिथि है। उन्हें भारत के कॉटन किंग के नाम से भी जाना जाता था। कपास बाजार में सफलता प्राप्त करने के बाद गोविंद राम सिकसरिया ने अपने क्षितिज का विस्तार किया और सर्राफा तथा अन्य कमोडिटी बाजारों में भी प्रवेश किया। वे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। कॉटन किंग गोविंद राम ने अपने जीवन काल में लगभग 2 करोड़ रूपये समाज कल्याण के लिए दान भी किए।
Yes, and Victor Hugo passed on this day in 1885. He was an immensely influential French romantic author, poet, playwright, and political activist. He is widely regarded as one of the greatest and the most versatile writers in French literary history. While revered in France primarily as a master poet, he achieved global fame for his legendary historical novels. His most famous works are the novels The Hunchback of Notre Dame in 1831 and Les Misérables in 1862. In France, Hugo is renowned for his poetry collections such as Les Contemplations and La Légende des Siècles, The Legend of the Ages.
20वीं सदी के जाने माने चिंतक, इतिहासवेत्ता, संस्कृतज्ञ और सौंदर्य शास्त्री गोविंद्र चंद पांडे की आज पुण्यतिथि है। वे संस्कृत, हिब्रू और लैटिन सहित अनेक भाषाओं के असाधारण विद्वान थे। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, बौद्ध दर्शन, साहित्य, इतिहास लेखन और दर्शन आदि में गोविंद चंद्र पांडे को विशेषज्ञता हासिल थी। वर्ष 2010 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
Yes, and Langston Hughes passed on this day in 1967. He was a pioneering American poet, novelist, and playwright. As a central figure of the Harlem Renaissance, Hughes is best known for being one of the first innovators of jazz poetry and for vividly capturing the realities of working-class black life in America.
काशी के प्रकांड विद्वान रेवा प्रसाद द्विवेदी की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रतिमान गढ़े। रेवा प्रसाद द्विवेदी साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान थे। उन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना की। इनमें विशेष है सबसे बड़ा महाकाव्य स्वातंत्र्य संभव।
Born on November 20, 1921, Chidananda Dasgupta passed away on this day. He was a film critic, historian, and a pioneer of the film society movement in India. A close association with the legendary filmmaker Satyajit Ray led to the formation of the Calcutta Film Society in 1947 with Sergei Einstein's classic Battleship Potemkin as his first screening.
और भारत में शायद ही ऐसा कोई खेल प्रेमी हो जो गामा पहलवान के नाम से परिचित ना हो। आज ही के दिन गामा पहलवान ने इस दुनिया में कदम रखा। उन्हें रुस्तम-ए-जमा पहलवान के नाम से भी जाना जाता था। गामा पहलवान भारत में एक किंवदंती बन चुके हैं। शारीरिक ताकत के लिए जिस प्रकार आजकल दारा सिंह की मिसाल दी जाती है, इसी तरह से कुछ समय पहले तक गामा पहलवान का नाम लिया जाता था। अपने पहलवानी के दौर में गामा पहलवान की उपलब्धियां इतनी आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय रहीं कि साधारणतः लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि गामा पहलवान वाकई में थे। गामा अपने पहलवानी जीवन में अजय रहे, जो किसी भी पहलवान के लिए आज भी असंभव है। ये गुण गामा को विश्व का महानतम पहलवान का दर्जा दिलाता है।
Yes, and Sir Arthur Conan Doyle was a prolific British writer and physician, best known for creating the legendary fictional detective Sherlock Holmes, like as we are mentioning in the beginning of our program, and his loyal companion Dr. Watson. Born on May 22, 1859 in Edinburgh, Scotland, he wrote 4 novels and 56 short stories featuring Holmes, which became massive milestones in the evolution of modern crime fiction. Though his legacy rests primarily on his master sleuth, Doyle was a versatile author who penned over 200 works, including science fiction, historical romances, poetry, and political essays.
हिंदी और रूसी साहित्य के आधुनिक सेतु निर्माताओं में से एक मदन लाल मधु की आज जयंती है। मॉस्को के प्रमुख प्रकाशन गृह प्रगति और रादुगा प्रकाशन में लगभग 4 दशकों तक संपादक अनुवादक पद पर रहते हुए उन्होंने 100 से अधिक क्लासिक रूसी पुस्तकों का हिंदी अनुवाद भारतीय पाठकों को सुलभ कराया। और प्रोफेसर मधु मॉस्को रेडियो से भी जुड़े रहे। इन दो भाषाओं में विशिष्ट रचना के लिए उन्हें पद्मश्री से विभूषित किया गया। और आज हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार राम लक्ष्मण की पुण्यतिथि है। राजश्री प्रोडक्शंस की ब्लॉकबस्टर फिल्म में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, इनके काम के लिए विशेष तौर पर इन्हें याद किया जाता है। तो आइए उनकी शानदार फिल्मों से गीत आपको यहां सुनाते हैं।
फूलों में खुशबू है, इस दिल में
कि तू है जन्मों के साथी हम साथ साथ है जन्मों के साथी हम साथ
का असली नाम विजय पाटिल था। वे संगीतकार जोड़ी राम लक्ष्मण में से एक थे। उनका नाम लक्ष्मण और जबकि उनके जोड़ीदार राम यानी कि राम सुरेंद्र थे। और राम सुरेंद्र की मृत्यु के बाद विजय पाटिल यानी लक्ष्मण ने अपने नाम के साथ राम भी जोड़ लिया और इस तरह से वे बन गए राम लक्ष्मण। इसके साथ ही अनुमति दीजिए जागृति और अभिषेक को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।